15 जून 2020 का शुभ दिन मंगलमय हो। इससे पूर्व की हम श्री महाराज जी का कोई लीला प्रसंग आपको सुनाएं। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक मंगलाचरण का मैं फिर से आपके सम्मुख दोहराती हूँ। तब कथा मितम तप्त जीवनम कलि भवेदितम कलम शापहम शबन मंगलम श्रीमदात भूगे गेनंति भूरिदास जनाः। श्रीमद् भागवत प्रभु तुम्हारी लीला तथा अमृत स्वरूप है। ताप तक जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। वह पाप पुंज को हरने वाली है। उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधुर तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस कथा जीवन की लीला का ज्ञान करते हैं, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। आज मैं आपको श्री महाराज जी के एक और दिव्य प्रसंग की ओर ले जाती हूँ। 4 नवंबर 1981 को श्री महाराज जी ने कहा कि वे राम शीतल जी के साथ होशियारपुर जाएंगे। श्री राम शीतल जी की धर्मपत्नी सुनीता देवी तथा उनका एक लौता बेटा त्रिभुवन भी श्री महाराज जी के साथ 5 नवंबर को प्रातः होशियारपुर बस से चल पड़े। यह भी श्री महाराज जी के साथ थी। लव के रास्ते रुकते हुए रात को होशियारपुर में भोपला जी के घर पहुंचे। श्रीमती भोपला, उनका लड़का तथा 3 पुत्रियां सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन बनाकर खिलाया, फिर शयन किया। रात उठकर सबने स्नान किया और फिर जलपान करके शहर गए। शहर में कुछ सामान खरीदा। श्री महाराज जी ने एक छोटे शिशु की तरह मांग की कि उन्हें एक लकड़ी का घोड़ा चाहिए। लकड़ी की वस्तुएं बेचने वाले के दुकानों में पूछा, परंतु घोड़ा नहीं मिला। एक दुकान में घोड़ा दिखाई दिया, परंतु श्री महाराज जी ने कहा, यह बहुत छोटा है, बड़ा साइज चाहिए और पीछे बैठने के लिए कुर्सी भी। दुकानदार ने हैरान होकर पूछा, किसके लिए चाहिए घोड़ा? तो श्री महाराज जी ने अपने दाएं हाथ की उंगली अपने छाते से लगाकर कहा, इसके लिए। दुकानदार ये सुन और भी हैरान हुआ। दोपहर को सब घर आ गए। 7 नवंबर को प्रातः श्री राम शीतल जी के माता जी के घर भोजन पर बुलाया था। श्री राम शीतल जी की धर्म पत्नी सुनीता जी की माता का ये घर है। यहाँ भोजन करके श्री महाराज जी को संतोष हुआ। दोपहर के बाद टैक्सी द्वारा राम शीतल जी हम सबको अपने गांव बसी ले गए, जहाँ उनके माता पिता तथा अनुज रहते हैं। चारों ओर खेती की हरियाली है, घर ईंटों का बना हुआ है, बीच में ही कुआं है, एक और गौ मंडी है, बछड़ा पास में है। राम शीतल के अनुज के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। श्री महाराज जी को उनके साथ खेल कर आनंद मिला। रात में माता जी ने मक्की की रोटी और साग बनाया। पूरे परिवार ने स्वामी जी के आसपास बैठकर प्रसन्नचित हो भोजन किया। जन्म का प्रसंग छिड़ा था। दूसरा प्रसंग गुरु के बारे में उठा। मुगल सत्संग के बाद रात्रि के 11 बजे सभी सो गए। प्रातः काल स्नान आदि करके सब ने जलपान किया। गांव घर में छोटे बच्चे का एक झूला था जो लकड़ी का बना था। श्री महाराज झूले में बैठकर चलचित शिशु की भांति झूलने लगे। सबको देखकर आनंद मिला। इस तरह आनंद की वर्षा करते हुए श्री महाराज सायंकाल होशियारपुर लौट आए। 8 नवंबर को श्री महाराज अतः हम सब होशियारपुर में ही रहे। तब भक्त परिवार स्वामी के दर्शनों के लिए वहां इकट्ठे हुए। श्रीमती भूपला जी, उनका एक लौता लड़का व उनकी लड़कियां हमारी बड़े प्यार से सेवा करने लगी। बाबा जी ने कहा, नीलू की ओर इशारा करके, मैं अतः बाबा इसे कुल्लू ले जाएगा। और नीलू का विवाह कुल्लू में लाला साधु राम जी के दूसरे पुत्र रिपन से कर दिया जाएगा। इस प्रकार वहाँ सब भक्तों को वरदान तथा अवेदान प्रदान किया। सायकाल शीतल जी के ससुराल में भोजन के लिए निमंत्रण था। वहाँ भी श्री महाराज ने भोजन करके बहुत प्रसन्नता प्रदान की। बीच में शहर के एक मंदिर में गए, जहाँ राधा कृष्ण के दर्शन करके संत हरिदास के दर्शन भी किए। रात्रि आकर भोपला जी के घर में रहे। भोपला जी के यहाँ एक कुत्ता बंधा है। महाराज जी उसे रोटी खाने में बड़ा आनंद लेते थे। लगातार तीन चार दिन बाजार से ब्रेड मंगवा कर उसे खिलाते थे। इसी प्रकार जीव दिया दिखाकर श्री महाराज सबको तृप्त किया करते। श्री महाराज कहा करते थे, जो मनुष्य केवल अपना ही पेट भरता है वह तो पाप खाता है। श्री महाराज जी की प्रत्येक यात्रा में हमने यही देखा कि उन्हें दूसरों को भर पेट खिलाने में अधिक प्रसन्नता मिलती थी। 9 नवंबर सोमवार को प्रातः सब भक्तों से मिलकर तथा नाश्ता करके पठानकोट जाने के लिए बस अड्डे पर आ गए। पठानकोट में श्रीमती कुसुम ने अपना सेवक श्री महाराज जी को लिवा लाने के लिए गाड़ी भेजी थी। अब श्री महाराज जी मैं तथा परिवार सहित श्री राम शीतल जी को देखकर कुसुम जी बहुत ही प्रसन्न हुई। श्रीमती कुसुम का परिचय हम पहले पा चुके हैं। श्रीमती कुसुम के पति श्रीलेंद्र मोहन सूद ने कंजोड़ी में दवाइयों का कारखाना लगाया है, इसलिए कुसुम कुल्लू से कंजोड़ी आ गई है। कुसुम को श्री महाराज जी के प्रति बहुत ही भाव है। दुख आने पर वह केवल श्री महाराज जी को ही पुकारती है। पिछले 6 महीने से उनका कारखाना बंद है। 2 महीने पहले वह कुल्लू आई थी और रो कर श्री महाराज से कहा था कि उनका कारखाना चलवा दे, अथा उन्हें आर्थिक संकट सहना होगा। श्री महाराज जी से उसने दिलवा लिया था कि वे उनके कारखाने में आएंगे। लेंदर मोहन 4 भाई हैं, सबका काम सब्जा है, भरा पूरा परिवार है। सन 1976 में इस परिवार का मस्त स्वर्ण आभूषण सरकार ने अमृतसर में छापा मारकर जब्त कर लिया था। आर्त भक्त को समय उसने अमृतसर में ही श्री महाराज को पुकारा और चुनौती दी कि यदि सरकार पूरा सोना लौटा देगी तो वह 5 तोला स्वर्ण आभूषण माँ वैष्णो के श्री चरणों में अर्पित कर देगी। भक्त की पुकार सुनी गई। कुसुम ने आकर स्वर्ण हार मंदिर में माता के चरणों में अर्पित कर दिया। जुलाई 1976 की बात है, श्री महाराज जी जयपुर गए हुए थे। खजानची के पास हार जमा कर दिया गया था। लगभग 1 वर्ष बाद नरेंद्र मोहन का अनुज हार मांगने के लिए आया और कहा, उसने हार पागलपन में भेंट किया है। श्री महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, कुसुम को भेजो, बाबा उसकी चीज किसी को सौंप देगा। जब कुसुम आई तो श्री महाराज जी ने वह स्वर्ण हार कुसुम की बेटी हीरा को दे दिया। कुसुम हार नहीं लेना चाहती थी। श्री महाराज जी ने कहा, तो ये मेरी तरफ से अतः बाबा की तरफ से मीरा की शादी में दे देना। इसके बाद जब कारखाने का माल बिकना और माल भेजने के लिए आदेश मिलना बंद हो गया तो कुसुम को लगा कि ये उसी अपराध का फल है जो उसके परिवार वालों ने हार मांग कर किया है। इसलिए वह 8 सितंबर को विशेष रूप से मंदिर आई थी और रो रो कर श्री महाराज से याचना कर कारखाने में आकर पुनः चालू करने का आशीर्वाद मांगा था। भक्त वत्सल श्री महाराज जी उसी वचन को पूरा करने के लिए आज हुशियारपुर से कंदोड़ी आए हैं। दोपहर के समय कुसुम हमें एक सैनिक मेजर के यहाँ ले गई। मेजर ने खूब स्वागत किया, कार्यालय से पिस्तौल मंगवाकर श्री महाराज जी को दिखाया और कहा, यदि आपको चाहिए तो आप लाइसेंस बनवाइए, ये पिस्तौल मेरी अपनी है, मैं आपको दे दूंगा। परंतु श्री महाराज जी ने इनकार कर दिया। श्रीमती मेजर एक अंगूठी लाई और श्री महाराज से कहा कि वे अपने कर कमलों द्वारा मेजर की उंगली में पहना दें। और श्री महाराज ने बड़े प्यार से वे अंगूठी मेजर को पहना दी। श्रीमती मेजर ने मेज पर भोजन लगाकर बड़े प्यार से हम सबको भोजन खिलाया। सायंकाल हम कुसुम के साथ घर आ गए। पठानकोट में एक भक्त श्री श्यामलाल जी भी रहते हैं। श्री श्यामलाल जी 1970 में अखाड़ा बाजार में किराए के मकान में रहते थे। उसी मकान में श्री महाराज 3 महीने तक श्याम के कमरे में रहे थे और यहाँ पर सत्संग भवन बनाया था। उन्हीं श्री महाराज जी ने मुझे अध्यक्षा बनाकर शारदा माँ सेवा संघ की स्थापना की थी। यहाँ पर मासिक रामचरित मानस का अखंड पाठ आरंभ किया था। श्यामलाल जी कुल्लू छोड़कर पठानकोट अपने पैतृक मकान में आ गए हैं। उनकी माता, धर्मपत्नी और 2 बच्चे उनके साथ रहते हैं। वे हमें कंदोड़ी से पठानकोट ले गए। कठोपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है, श्रेय और प्रेय दोनों ही मानव के पास आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य दोनों पर ही विचार करता है और दोनों में ठीक ठीक अंतर भी देखता है। बुद्धिमान श्रेय को अच्छा मानता है, जबकि अज्ञानी मानव संसार संपत्ति की इच्छा को प्रकट करता है। श्री महाराज शाम के घर पहुँच कर बहुत आनंदित हुए। श्याम की माता जी ने हार्दिक स्वागत किया, बड़े प्रेम से भोजन बनाकर खिलाया और सायंकाल शहर देखने के लिए ले गए। शहर में राधा कृष्ण के मंदिर के दर्शन किए। कार्तिक पूर्णिमा है इसलिए सत्संग भजन कीर्तन हो रहा है। श्री गुरु नानक देव जयंती के उत्सव पर जुलूस भी निकला है। रात्रि उस भक्त परिवार ने हमें अपने बिस्तर दे दिए, जो ना जाने सिर्फ किस प्रकार रात्रि काटी। प्रातः वहाँ मैंने देखा कि अतिथि देवो भव या गुरु सेवा क्या होती है। प्रातः काल शीघ्र ही उठकर स्नान आदि करके हम सब के भोजन की सुंदर व्यवस्था कर रखी थी। दाल भात कड़ी आदि प्रेम से पका कर उन्होंने श्री महाराज जी को भोग लगाया, फिर स्वयं खाया। इतना सहज भक्ति भाव है उनमें। ये स्वामी ने बार बार हाथ जोड़कर भगवत भक्ति मांगी। भक्त वत्सल श्री महाराज जी ने उन्हें अनपाइनी भक्ति का वरदान दिया। दोपहर पश्चात हम सब कंदोड़ी आ गए और वहाँ से सामान लेकर फिर पठानकोट आए और वहाँ से रात की गाड़ी पकड़कर पालमपुर बनोरी की ओर चले। बनोरी में महिला भक्त श्रीमती कटोच के घर भी अवश्य जाना था। रास्ते में एक ट्रक के उलट जाने के कारण रास्ता बंद था, इसलिए धर्मशाला कांगड़ा होते हुए रात 1:30 बजे हम बनोरी पहुँचे। भारी वर्षा के कारण हम सब भीग गए थे। घर सड़क से दूर था। वहाँ जाकर द्वार खटखटाया तो उनका लड़का बाहर निकला और कहा कि मम्मी तो दिल्ली गई है। तब बिस्तर उठा कर सो गए। माता उठकर दाल चावल पकाकर खाए और गाड़ी पकड़ कर मंदिर के लिए चल दिए। मंदिर में राजू पृथ्वीराज और सुभाष के पास रहे। राजू और सुभाष दोनों ही श्री महाराज जी के भक्त हैं। दोनों के घर आसपास हैं, दोनों ने प्रेम पूर्वक सेवा की। दूसरे दिन तारना मंदिर गए, मंदिर शहर देखा और रात्रि को कुल्लू पहुँच गए। राम शीतल जी श्री महाराज जी को अपने घर ले गए। रात्रि कहीं भोजन और विश्राम हुआ। प्रातः काल श्री महाराज जी मेरे मातृगृह में गए। वहाँ भैया रामलाल जी ने अपने हाथ से प्राण चढ़ा कर खिलाते हुए कहा, महाराज जी ये सुदामा के तंदूर है। फिर महाराज में हम सभी हंस पड़े। फिर दोपहर में हम सब मंदिर आ गए। यात्रा के कारण थकावट हो गई थी और फिर मंदिर में आकर विश्राम का समय नहीं मिला, इससे श्री महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और मैं भी बीमार सी हो गई। मैंने श्री महाराज जी को छोटी कुटिया मिलाने के लिए कहा और उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की। वह छोटी कुटिया में आ गए। उन्हें भारी बुखार था। मैं सारा दिन मंदिर की देखभाल करती और रात को बड़ी थकी होती जाती और धरती ही अपना बिछौना लगाती थी। तो श्री महाराज के पास थोड़ी सी जगह थी, लेकिन मैं धरती सो जाया करती थी। मुझे भी बुखार हो गया और मैं बहुत बीमार हो गई। तीन चार दिन बुखार आता फिर चढ़ता। एक दिन रात्रि 9 बजे मेरा बुखार उतर गया और मैं ठंडी से पड़ गई। तो उन दिनों नरेंद्र भाई जी जिनका नाम संन्यास के बाद स्वामी विवेक था, वो मंदिर में ही थे। उन्होंने अभी संन्यास नहीं लिया था। उनका छोटा भाई भी उनके पास था। नरेंद्र जी ने अपने छोटे भाई को कहा कि जाओ रामलाल भाई जी के घर जाओ और वहाँ जाकर बताओ कि माता जी बहुत बीमार हो गई है। सुबह साइकिल पर आधी रात को रामलाल भाई जी के घर में पहुँचा। रामलाल भाई जी ने उन दिनों आस पास कहीं मोटरसाइकिल नहीं था, न ही कोई गाड़ी थी, इसलिए रामलाल भाई जी राम शीतल जी के घर गए। उन्हें उठाया, उनके पास मोटरसाइकिल था। शीतल जी रामलाल भाई जी को लेकर ढालपुर पहुँचे। वहाँ पर एक हमारे फैमिली बैग थे, हिमिंदत बैग, उनके घर में गए, उनको उठाया और उनको मेरी हालत बताई। तो उन्होंने जो दवाई दी उसको लेकर रामलाल भाई जी और शीतल रात 3 बजे वहाँ मंदिर में पहुँचे और स्वयं अपने हाथों से सूंड का काढ़ू बना करके मुझे दवाई खिलाई और स्वयं वो दोनों वापिस हो गए। और प्रातः काल उन्होंने भाई जी ने रामलाल भाई जी ने गाड़ी भेजी और मुझे घर में बुला लिया और मैं घर चली गई। 15 दिन मुझे घर में रहना पड़ा। मेरे माता देवी जी ने बहुत ही मेरी सेवा सुरक्षा की और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं फिर मंदिर में आकर अपने कार्य को करने लगी। मुझे मंदिर में फिर भी आराम नहीं मिलता था, लेकिन क्या करूं, बड़ी से बड़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जब हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो फिर जीने मरने का भी सवाल नहीं रहता। सेहत भी नहीं देखी जाती, बस जो कार्य सामने आ गया वो तो करना ही होता था। उन्हीं दिनों टाइगर नामक मेरा प्रिय छोटा सा सफेद कुत्ता भी चल बसा। वो ऐसे चल बसा कि वह दिन के समय घूमने गया और रात्रि वापस नहीं आया। उसके लिए स्वामी जी 3 दिन रुकते रहे, न भोजन खाए न कोई बात करें। मैं अकेली थी, स्वामी जी को देखूं कि मंदिर को देखूं कैसे संभालूं। मैंने लाला साधु राम जी को बुलाया। साधु राम जी ने स्वामी जी को बहुत हौसला दिया। ऐसा लगता था मानो भगवान राम सीता जी के लिए व्याकुल है। सीता जी जब गुम हो गई थी तो राम जी कितने व्याकुल थे, ऐसे ही वो टाइगर गुम हो गया था। उसके लिए स्वामी जी बहुत व्याकुल थे, बहुत दुखी थे और उन्होंने मनाली तक पता दे दिया था कि प्रत्येक टैक्सी को देखा जाए मनाली से मंदिर तक, अगर कहीं टाइगर मिलता है तो उसको वापस ले आओ। दिन रात 3 दिन यही हुआ। फिर रामलाल भाई जी को बुलाया। दोनों ने स्वामी जी को हंसी हंसी में कहा, महाराज जी आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, آپ کہو کیا یہ کیسی لیلا کر رہے ہیں, یہ کیا لیلا ہے, یہ بھگوت لیلا ہے کہ آپ اتنے دکھی ہیں. یہ تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سنسار میں ایسے ہی دکھوں کو لے کر منشیا دکھی ہوتا ہے. اس پرکار سمے ویتیت ہوتا گیا. 1982 کا نو ورش آ گیا. نو ورش کی بدھائی دینے شری رام شیتل برفی لے کر شری مہاراج کی کٹیا میں آئے اور شری مہاراج کو بھوگ لگایا. میں نے بھی شری مہاراج اور شری رام شیتل کو بھوجن کھلایا. اب 14 جنوری کو سوامی وویکانند کی جینتی کے اتسو کی تیاری کی گئی. 13 جنوری کو اکھنڈ پاٹھ رکھا گیا. 14 جنوری کو ہون کنیا پوجن اور بھنڈارا ہوا. سب بھکت لوگ اکٹھے ہوئے اور شردا سے اتپن ہوا وہ دیویا آنند جو بھکتی سے اتپن ہوا تھا وہ ہمیں پراپت ہوا. اور اس پرکار سبھی بھکت لوگ بہت ہی پرسن چت سے دیوی شکتی کو لے کر اپنے گھر کو ودا ہوئے. 1982 کے تہوار ایوم اتسو. 18 جنوری 1982 کو میرے ماتا جی کے گھر میں چھپے کھانے کا اُدگھاٹن تھا. ریا کرشن لال جی نے اپنے دونوں پتروں انل اور راجن کے لیے پریس کھولا تھا. اسی لیے وہ ایک دن پورب آئے بھیا کرشن لال جی اور مہاراج جی سے کہنے لگے کہ مہاراج جی کل چھپے کھانے کا ادگھاٹن ہے اور آپ کے چند کملوں میں میں اپستھت ہو گیا ہوں. آپ سوئم آ کر کے اپنے کر کملوں سے چھپے کھانے کا ادگھاٹن کریں گے. شری مہاراج جی نے بھکت کرشن لال جی کا آگرہ سویکار کیا. کرشنال بھیا جی نے کہا کہ ادگھاٹن 10 بجے ہے مہاراج جی, میں 9 بجے گاڑی بھیج دوں گا اور آپ نے ماتا جی کو بہن جی کو لے کر آ جانا. کرشنال بھیا چلے گئے. سوامی جی نے رات کو ہی کہہ دیا کہ ماتا جی ممی جی پرانتا ہم سب کو بھیا کرشنال جی کے وہاں جانا ہے, وہ بڑا پریمی ہے, اس نے بڑے پریم سے ہمیں بلایا ہے. پراتا 18 جنوری کو سوموار کا دن تھا. شری مہاراج جی کو پرایا اور میں بھی پرایا. 4 بجے ہم اٹھ ہی جاتے تھے اور اسی تو سوامی جی نے اٹھ کر سوچ آدی سے ملت ہو کر کہا ہم لوگ ابھی پیدل ہی شری کرشن لال جی کے گھر چلے جائیں گے. میں نے کہا یہ کیا 5 بجے ابھی اور جنوری کا مہینہ ہے وہ کیسے رات ابھی کھلی نہیں ہے, کیسے جائیں گے ہم سوامی ابھی نہیں جائیں گے. بھائی جی نے کہا کہ 9 بجے گاڑی بھیجوں گا تبھی ہم جائیں گے, سردی بھی بہت ہے ٹھنڈ بھی بہت ہے. لیکن مہاراج جی کہیں نہ نہیں ہمیں تو چلنا ہی ہے ابھی چلنا ہے. وہ دنوں مجھے کیول ساری ہی پہننی ہوتی تھی, بہت مشکل لگ رہی تھی, سر میں درد ہو رہا تھا, پر مہاراج جی کے آدیش انوسار ہم سب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. ان دنوں نریندر جی بھی رہتے تھے مندر میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلے اور بھالو جو ہمارا بہن تھا ہمارے ساتھ چلتا تھا بھالو کتا وہ بھی ہمارے ساتھ چل دیا. ہم مندر سے پیدل ہی پراتا 5:30 چل پڑے اور 1 گھنٹے میں اکھاڑا بازار میں بھیا کرشن لال جی کے گھر میں پہنچ گئے. راستے میں بڑی تکلیف بھی ہوئی, شری مہاراج جی تو ننگے پاؤں اور کیول ایک چادر میں لپٹے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے, بڑے بڑے قدم لے رہے تھے, لیکن میرے لیے چلنا بہت ہی کٹھن تھا. ایک تو میں نے بہت سے گرم کپڑے پہن رکھے تھے اور شری مہاراج جی کی جو سوبھاوک تیز چال تھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا بہت مشکل لگ رہا تھا. پھر بھی سوامی جی کی کرپا سے ہم جب گھر میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ سبھی سمست پریوار اندرا دیوی کی گود میں آنند لے رہا تھا. شری مہاراج جی کا آگمن سن کر سبھی ہڑبڑا گئے اور شیگر سیوا میں رت ہوئے. شری ماتا جی نے شیرتا سے گرم جل لایا اور شری مہاراج جی کے چند ہوئے. श्री महाराज जी चरण नहीं देना चाहते थे, तो माता जी के आग्रह से उन्होंने अपने चरण आगे बढ़ाए और नाम मात्र के लिए चरण धुलाए और माता जी चरण कमल का जल लेकर स्वयं भी पिया और परिवार को भी पिलाया। फिर श्री महाराज जी ने कहा कि बाबा तो मंदिर में सो जाएगा, तेरी माता जी का घर का मंदिर था, वहीं जाकर स्वामी जी लेट गए। अब सारे घर परिवार के सदस्य उठ गए थे, सब तैयार हो गए थे, स्नान हो रहा था, होते होते 8 बज गए, 9 बज गए। अब कृष्णलाल भैया कहने लगे कि महाराज जी आ तो गए हैं, लेकिन है कहाँ पर? तो माता जी ने बताया वो तो मंदिर में अंदर ही थे, समाधिस्थ है। वो कहते हैं अच्छा चलो 9 बजे उठ जाएंगे, लेकिन 9 भी बज गए, श्री महाराज जी नहीं उठे। अब लोगों को 10 बजे बुलाया है, लोग भी आना शुरू कर दिया, तो अब रामल भाई जी को भी चिंता हुई कि अब क्या करें, उद्घाटन का समय हो चुका है तो स्वामी जी को कौन उठाएगा। तब रामलाल भाई जी भीतर गए और जाकर धीरे धीरे श्री महाराज जी के कानों में कहा, स्वामी जी उठो लो, छापाखाने का उद्घाटन हो रहा है और सभी लोग भी आ चुके हैं और आपकी राह देख रहे हैं। तो श्री महाराज जी ने धीरे से कहा, रामलाल आप बाबा की भूमि से माता जी से उद्घाटन करवा लो। और फिर भैया जी ने उनकी बात मानी और मैं छापाखाने के उद्घाटन के लिए जनता के बीच में आ गई और छापाखाने का उद्घाटन किया। वैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, वैसे ही भालू कुत्ता जो मेरे साथ आया था मंदिर से, वो झट से उस कुर्सी पर बैठ गया जो कि छापाखाने के वहां रखी हुई थी, वो चीफ गेस्ट के लिए जो कुर्सी होती है उस पर वो बैठ गया। भालू को उस पर बैठ गया, सभी लोग हंस पड़े और जनता देखकर चकित हुई कि ये कैसा है, किस ढंग से ये बैठ गया जैसे कोई मनुष्य बैठता है। उद्घाटन के पश्चात लड्डू बांटे गए और बधाई देकर पड़ोसी चले गए। दोपहर के उसमें भोजन कर श्री महाराज के साथ मैं भी मंदिर लौट आई और वो वक्त दिन रात जनता जनार्दन की सेवा में मैं रत हो गई। 23 जनवरी 1982 को श्री महाराज ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए मुझे कहा कि हलवा प्रसाद और भोजन बना कर सबको भोग लगेगा। अतः उस दिन सब ने मिलकर सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाया। उस दिन रविवार था, 30 जनवरी को बसंत पंचमी मनाई गई। 18 फरवरी को श्री कृष्ण परमहंस जयंती मनाने के लिए भी भक्त इकट्ठे हुए। 21 फरवरी को महाशिवरात्रि का महोत्सव था, इसलिए कुछ भक्त लोग 1-2 दिन पहले ही आ गए थे। शिवरात्रि के दिन प्रातः महामंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ आरंभ हुआ। दिन भर फलाहार का प्रसाद बांटा गया। रात्रि जागरण हुआ। अगले दिन हवन कन्यापूरी से पाठ समाप्त हुआ तथा महाप्रसाद बनाकर भंडारा किया गया। 25 मार्च से नवरात्रि का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मंदिर की सफाई आदि करके इसे सजाया गया। बाल गोपाल आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र की तैयारियां हो रही हैं। बाल वृंद के लिए बहुत सी सुंदर पुस्तकें जगदीश भाई जी लाए हैं और कृष्णलाल भाई जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बच्चों की पुस्तकें मंगवा करके मंदिर में दे दी है, जिन्हें देखकर श्री महाराज जी बड़े खुश हुए। 25 मार्च गुरुवार से 31 मार्च बुधवार तक नवरात्रि होने के कारण दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रहती। 1 अप्रैल गुरुवार को प्रातः मैंने श्री रामचरित मानस का पाठ आरम्भ किया। महाराज जी मानस पाठ को बहुत ही महत्व देते हैं। भक्त लोग विविध कार्यों में जुट गए। 2 अप्रैल को प्रातः 8 बजे पाठ सम्पन्न हुआ। व्यास नदी के किनारे विशाल भंडारे का आयोजन हुआ जहाँ श्री महाराज स्वयं विराजमान है। सभी भक्त सेवा में जुटे हैं। आज ही बाल गोपाल केंद्र का भी उद्घाटन हुआ। लगभग 70-80 बच्चे एकत्र हुए। उन दिनों श्री राजन आचार्य भी मंदिर में आया करते थे और वो हमारी कमेटी के एक घनिष्ठ सदस्य थे। फिर बच्चों को प्रसाद बांटा गया। 14 अप्रैल 1982 से शिक्षा केंद्र की कक्षाएं नियमित रूप से आरंभ हो गई। विद्यालय में अवकाश होने के कारण प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक कक्षा चलती और मैं स्वयं उनको पढ़ाती। इस स्कूल में, इस विद्यालय में मैं बच्चों को अधिकतर मॉरल एजुकेशन दिया करती थी। ये प्रति सप्ताह रविवार को प्रायः स्कूल चलता था। अखाड़ा बाजार से तथा वाशिंग से भी बहुत से बच्चे आया करते थे। उसी दिन 2 अप्रैल 1982 को लगभग 2 बजे जिलाधीश कुल्लू के कार्यालय से एक व्यक्ति ने आकर बताया कि हिमाचल के राज्यपाल अशोक बनर्जी भी आ रहे हैं। ये सूचना मिलते ही मैंने श्री महाराज को इससे अवगत कराया। नरेंद्र उसमें चरणामृत प्रसाद बांट रहे थे। राज्यपाल के आगमन के उपलक्ष्य में श्री महाराज ने स्वयं अपने हाथों से हलवा बनाया। लगभग 3 बजे राज्यपाल स्थानीय अधिकारियों जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक के साथ मंदिर में आ गए। उसमें मैं गुफा के बाहर ही थी। हमने राज्यपाल का स्वागत किया। जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक ने राज्यपाल को मेरे से मिलाया और मेरा परिचय दिया तो राज्यपाल बहुत ही प्रसन्न हुए। राज्यपाल की धर्मपत्नी बेटा एवं बेटी भी उनके साथ थे। मैंने स्वयं उन्हें सारा मंदिर दिखाया। राज्यपाल महोदय को मंदिर के भव्य दृश्य, सुव्यवस्था तथा सफाई आदि देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, आप पर बड़ी भगवत कृपा है, ये मंदिर बढ़ता ही जाएगा। मैंने उन्हें हलवा प्रसाद दिया और कुछ फल फूल भी दिए। मंदिर का पुस्तकालय देखकर उन्होंने नवोद्घाटित बच्चों की पाठशाला भी देखी। लौटने लगे तो राज्यपाल ने जिलाधीश एसपी से श्री महाराज जी के बारे में पूछा, उनसे मिलने का आग्रह किया। इसलिए नरेंद्र भीतर कुटिया में गए। श्री महाराज जी ने बाहर आकर राज्यपाल से हाथ मिलाया लेकिन बातचीत नहीं की। तब राज्यपाल बहुत प्रसन्न हुए और महाराज जी से विदा लेकर के जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मेरे से पूछा, माता जी क्या आप लूर मठ और दक्षिणेश्वर गई हैं? मैंने कहा, जी हाँ मैं वहाँ गई हूँ। तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वह सड़क पर पहुँच कर राज्यपाल ने अपनी पत्नी बेटे और बेटी सहित प्रणाम किया और गाड़ी में बैठकर चले गए। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूँगी कि श्री महाराज जी की धीरे धीरे नवम नवम लीला आपको सुनने को मिलती है और मुझे सुनाने को मिलती है। यदि अतीत काल की मधुर स्मृतियों में खो जाती हूँ और आपको भी एक दिव्य आनंद मिलता है, इसके लिए मैं आप सबकी बड़ी आभारी हूँ। भगवान इस दिव्य क्रम को ऐसे ही बनाए रखे। गीता माँ।